हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 और 2। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, करारविंदे, नपदारविंदम्, मुखारविंदे, विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबस्वा मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धर्माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। अध्याय 4 जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रमा। आज सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत ही सुंदर वार्ता जो कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के दरमियान हो रही है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन तो केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए ही मिला है, क्योंकि जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं उसी से हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक होता है। और जब दो भगवान के शुद्ध भक्त मिलते हैं उनके दरमियान जो वार्ता चलती है उसी को श्रवण करने से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। इसलिए हमें बताइए कि जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की भेंट हुई तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कौन से प्रश्न पूछे और उन्होंने क्या उत्तर दिया, उसी के वार्ता को प्रारंभ करते हुए आज सूत गोस्वामी बता रहे हैं। इन अत्यंत ही सुंदर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच वैयासकी रीति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णो उत्तरीय सतीं व्यधात् वैयासकी रीति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णो उत्तरीय सतीं व्यधात् वैयासकी रीति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे उत्तरीय सतीं व्यधात् वैयासकी रीति वचः। सूत उवाच यानी सूत गोस्वामी ने कहा, वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी जो कि वेद व्यासी के पुत्र थे, इति वचः इस प्रकार शब्दों को, और उनके वचन कैसे थे, तत्व निश्चय यानी सत्य की पुष्टि करने वाले वेद व्यासी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जो भी शब्द अपने मुख से उच्चारण करते थे ना, वो सिर्फ तत्व निश्चय तत्व के अनुसार सत्य की पुष्टि करने वाले शब्द थे। आत्मनः यानी अपने में उपधार्य ठीक से समझकर, जब उपधार्य का मतलब होता है जब हम किसी भी श्रवण कोई भी बात को श्रवण करते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, यानी बिल्कुल ठीक से उसको समझ लेते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को परीक्षित महाराज ने श्रवण किया तो उपधार्य अपने जीवन में उसको उतार दिया। क्या श्रवण किया कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारे प्रेम का केंद्र बनने के योग्य हो। कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के विषय में श्रवण नहीं करना है, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के प्रति में विचार नहीं करना है। मन में यदि किसी को बिठाना है तो केवल कृष्ण को। तो यदि कृष्ण के विषय में इतना तत्व के साथ उन्होंने सुना तो उससे क्या लाभ हुआ, मतिम कृष्णो उत्तरेय सती। सती का मतलब होता है कि उनकी जो उत्तरेय, उत्तरेय यानी उत्तरा के पुत्र की मति जो है, बुद्धि जो है, वो कृष्ण के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर सतीम व्यधात सती हो गई। यानी मति जो हर समय कुछ न कुछ अलग अलग वस्तुओं की ओर भागती रहती है, अलग अलग डिमांड्स करती रहती है ना, वो मति जब तक कृष्ण के अंदर आकर्षित नहीं होती है ना, तब तक ना जाने कितनी वस्तुओं के अंदर आकर्षित होती रहती है, और वही हमारे सबसे बड़े कष्ट का कारण बनता है ना, कभी क्या चाहिए कभी क्या चाहिए। तो ये मति उपधार्य मति कृष्ण उत्तरा के पुत्र की मति जो थी वो कृष्ण के अंदर सती हो गई। सती हो गई मतलब अब उन्हें और किसी भी वस्तु की कोई इच्छा बाकी नहीं रही। वास्तव में शास्त्र जो तत्व यहाँ पर जो बताया, तत्व निश्चय, तत्व यानी सत्य को की पुष्टि करने वाले शब्दों को श्रवण करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तत्व को सुनने से एक कार्य निश्चित रूप से होता है और वो क्या है? मति कृष्ण में लग जाते हैं। यदि आप किसी शुद्ध भक्त से श्रवण कर रहे हो और एकदम सच्चे हृदय से उन शब्दों को धारण करते हो, उपधार्य मति, तो फिर निश्चित रूप से आपकी मति भगवान में लगेगी। मतलब जो सुना है अगर वो वास्तविक सत्य की पुष्टि करने वाला है तो उसका लाभ क्या होगा कि मति के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और मति कृष्ण के अंदर सती हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, श्रवण करने के बावजूद भी यदि भौतिक इच्छाएं अभी तक हमारे मन में घर किए हुए हैं, अभी तक भौतिक कार्य करने की इच्छा है, भौतिक लाभ की इच्छा है, भौतिक जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति है उनको प्राप्त करने की हमारे हृदय में यदि वासना बाकी है ना, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, जो सुना है वो तत्व निश्चय नहीं होगा, वो वास्तविक सत्य की पुष्टि करने वाला नहीं होगा, भगवत प्रेमी के द्वारा नहीं सुना होगा या भगवान के शब्द नहीं होंगे, उसने कुछ भी बता दिया। यदि भौतिक इच्छा बाकी है ना, तो इसका मतलब है तत्व को नहीं श्रवण किया, सुनाने वाले ने गलती की कि आपको सही नहीं सुनाया, या फिर आपसे गलती हो गई कि आपने ठीक से श्रवण नहीं किया। उपधार्य मति कृष्ण, वास्तविक लाभ तब होगा जब सुनाने वाला परफेक्ट शब्दों को सुनाए और श्रवण करने वाला उसको पूर्ण रूपेण उपधार्य यानी ठीक से समझकर उसको ग्रहण करे। सुनने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ध्यान कृष्ण में आसक्त हो जाए, आसक्त, पूरी आस्था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित हो जाए। क्योंकि ये जो संसार है इसमें दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो आस्था है वो भटी हुई है, हमारा प्रेम भटा हुआ है, हमारी मति भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंदित होने का प्रयास करती रहती है। इसी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव। इस संसार में यूं तो करोड़ों करोड़ों असंख्य जीव हैं और वो भटकते रहते हैं। सृष्टि जब से स्टार्ट हुई है तब से जितने भी जीव हैं बारंबार जन्म मरण के चक्कर में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी कुछ, कभी मनुष्य बनकर इस भौतिक जगत में आते हैं और कुछ समय के बाद मृत्यु के उपरांत वो पुनः दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं। इस तरह कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में उनका जन्म होता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, उनमें से कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु कृष्ण कृपा पाई है, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये दोनों की कृपा जब साथ मिलती है ना, तब भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। इस तात्पर्य विष्णु प्रभुपाद जी एक बात बहुत ही सुंदर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यधिक आवश्यक हैं। एक तो किसी भक्त परिवार में जन्म मिल जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भगवान की कृपा होती है ना, तभी हमारा जन्म किसी भक्त के घर में होता है। तो यदि भक्त के घर में जन्म मिल जाए ना, तो समझो 50% काम आपका हो गया। अब आपको उस भक्ति के लिए अपनी ओर से अधिक स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। आप वही खाओगे जो भगवान को भोग लगेगा, आप वही श्रवण करोगे जो भगवान के शब्द होंगे, आप पूरा दिन आपका उसी तरह से मैनेज्ड होगा जिसके भगवान की सेवा करने का बार बार आपको अवसर मिलेगा, संतों के दर्शन होंगे, भक्तों भगवान का दर्शन होगा, मंगल आरती, संध्या आरती, जब हर चीज आपको एकदम सुविधा के साथ प्राप्त होगी। भक्त के घर जन्म हो गया ना, समझो आपको टिकट मिल गया। अब टिकट मिल जाना तो काफी नहीं है ना, आपको टिकट मिल जाएगा उसके बाद भी आपको समय पे जाकर ट्रेन तो पकड़नी होगी ना, है ना। टिकट मिल जाना इस बात की गारंटी तो है, यदि आप बैठोगे तो आपको आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन बैठना तो पड़ेगा ना समय पे जाकर। तो उस तरह से पहले तो भक्त के घर में परिवार में जन्म मिल जाए, और दूसरा लाभ क्या है, प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त। अब इतने सीरियस हो जाओ कि हाँ मुझे अब इस जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाना है, अब जो मेरी मति है उसको मुझे भगवत प्राप्ति के लिए ही यूज करना है, और उसके बाद एक शुद्ध गुरु, एक शुद्ध प्रामाणिक गुरु से जब आप दीक्षा ग्रहण करते हो, और इस तरह से जब आप सीरियस हो जाते हो, नियम को फॉलो करते हो, गुरु आदेश का पालन करते हो, तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो गुरु पहले कृष्ण की कृपा होती है कि आपको ऐसे संतों का साधुओं का संग मिलता है, और फिर जब गुरु आप उसको धारण करते हो फिर गुरु की कृपा मिलती है जब आपको कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। अनुवाद देखिए, सूत गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी से, आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। ये अत्यंत ही सुंदर बात है, मतलब जब आप श्रवण करते हो तो आपको भी कुछ करना है, खाली श्रवण करके एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना है, बल्कि क्या करना है, आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। ध्यान तो टिकेगा नहीं, बार बार अलग अलग जगहों पे जाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप बार बार अपने मन को ये बात समझाओगे कि नहीं, वास्तव में कल्याण तो भगवान के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करने से है। तो फिर जिस तरह सुखदेव गोस्वामी ने अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाया है, उसी तरह से हमें भी अपने ध्यान को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी सबसे पहले सतीम शब्द की महत्ता बता रहे हैं, जो सेकंड लास्ट शब्द है, उपदार्य मतिम कृष्ण औत्तरेय सतीम यथात। सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है, इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकर्षित करना है। शास्त्र क्यों है, हम शास्त्र क्यों श्रवण कर रहे हैं, सत्संग क्यों अटेंड करते हैं, भागवत कथा क्यों सुनते हैं, एक ही उसका लाभ है कि आपकी मति जो है वो भगवान के चरण कमलों में आकृष्ट हो जाए। बस जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में बताया, वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यो। सारे वेदों को श्रवण करने का एक ही कारण है, एक ही मकसद है, क्या आप मुझे समझ जाओ, बस मेरे पास आने का प्रयास करो, मुझे प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाए, यही है कारण, यही है लाभ। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करने के पूर्व ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु भंग से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से उस अग्नि अस्त्र से जलने के से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयुक्त हो गए थे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें वो घटना याद करा रहे हैं जब युद्ध, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, और अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए पांडवों के संपूर्ण कुल का सर्वनाश करने के लिए जो अंतिम बीज यानी महाराजा परीक्षित जो कि अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे उनको भी मारना चाह रहे थे और ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ पर। लेकिन उस समय उत्तरा भगवान श्री कृष्ण जो कि हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका जा रहे थे रथ पर सवार थे, उत्तरा भागती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देवी जगत गुरु, हे महायोगी आप कृपा करके मेरे गर्भ में स्थित मेरी संतान की रक्षा कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण अति सूक्ष्म रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे। वहीं पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था और उसी समय से उनका मन भगवान श्री कृष्ण में आकृष्ट हो गया था। वो उसी सुंदर छवि को सदैव निहारते रहते थे। उनका जन्म हो गया था, उसके बाद वो छोटे से पालने में होते थे, कोई भी उनको उनके पास आता था वो गौर से उसको देखते थे कि कहीं ये वो तो नहीं जिनका सुंदर मुख मैंने गर्भावस्था में देखा था। वो ध्यान से देखते थे, परीक्षा करते थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षण करने वाला होकर उनका नाम परीक्षित रखा गया कि वो सदैव भगवान को ही उनके नेत्र खोजते रहते थे। तो उसी समय से उनका मन तो भगवान के अंदर पूर्ण रूपेण आकृष्ट हो गया था, अतएव स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे। तथा जब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि वैसे तो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अन्य अन्य देवताओं के विषय में बताया गया है, लेकिन यदि वास्तविक लाभ प्राप्त करना है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के ही शरणारविंद का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को यह उपदेश दिया और उन्हें पता चल गया कि चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से तो भी हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम, प्रेम तो पहले से ही था लेकिन प्रेम तो हमारे हृदय में सबके हृदय में पहले से ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदो नाय, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि प्रेम किसी बाजार में किसी सुपर स्टोर में मिलेगा और आप उसे घर लेकर आओगे और अपने हृदय में डाल दोगे। प्रेम आपके हृदय में पहले से ही है। जीव आत्मा के पास यदि कोई अपनी पर्सनल संपत्ति है तो वो प्रेम ही है। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि सहज प्रेम जब कृष्ण के प्रति हम श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों से उनके विषय में, उनकी महानता के बारे में, उनके करुणा के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, तो वो सहज प्रेम और भी दृढ़ हो जाता है। वो जो बुझ गया होता है उस प्रेम की अग्नि जो है वो भड़क उठती है। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं, श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यधिक आवश्यक हैं। नंबर एक, भक्त परिवार में जन्म लेना। नंबर दो, प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित के ये दोनों सु अवसर प्राप्त हो गए थे। वे पांडवों जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने के लिए तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के लिए के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक के द्वारा शाप दिया गया था, और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका था। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह हमारा जो परीक्षित पर पूरी तरह से लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी सु अवसर प्रदान किया। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बता रहे हैं बहुत ज्यादा कि भगवान की पहली कृपा क्या थी कि वो पांडवों के वंश को बचाना चाहते थे और उन्होंने माता उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा कर सकते हैं तो क्या एक ऋषि कुमार के श्राप से उनकी रक्षा नहीं कर सकते? तक्षक सर्प के ढसने से उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे? भक्तों, यदि भगवान चाहते तो परीक्षित महाराज उस सर्प से भी बच सकते थे, परंतु यदि यहाँ पर अगर देखा जाए, पहले तो भगवान ने गर्भ में उनकी रक्षा की ब्रह्मास्त्र से, उसके उपरांत उन्हें क्या प्राप्त हुआ? इस भौतिक जगत में जन्म प्राप्त हुआ। भगवान जब किसी की सुरक्षा करते हैं ना इस भौतिक जगत में, तो भी इस भौतिक जगत में जो कष्ट है वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सारे कष्टों को भुगतना पड़ेगा। और परीक्षित महाराज को समय बीतने के बाद एक ब्राह्मण बालक के द्वारा श्राप मिल गया, लेकिन उस समय जब ब्रह्मास्त्र उनको लगा था और तब उनकी माता ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया, लेकिन उसके उपरांत उन्हें इस भौतिक जगत का दुख झेलना पड़ा। लेकिन जब आज परीक्षित महाराज को श्राप मिला है 7 दिन में मृत्यु प्राप्त करने का, तो उस समय परीक्षित महाराज किसका आश्रय लेते हैं? भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। और इतिहास गवाह है, जब उन्होंने भगवान की कथा का आश्रय लिया, शुद्ध भक्त का आश्रय लिया, तो उन्हें भौतिक जगत में दोबारा कभी जन्म न लेना पड़ा, उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए, साक्षात भगवान की कृपा से भी अधिक महत्वपूर्ण है किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भागवतम को श्रवण, क्योंकि जब हम भगवान के किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भागवतम को श्रवण करते हैं तो हमारी मति पूर्ण रूपेण कृष्ण में लग जाती है। और भगवान कहते हैं, अंतकाली च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि यदि कोई अंतिम घड़ी तक मुझे ही स्मरण करता है, माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे स्मरण करता है और अपने इस कलेवर को त्यागता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी मति उस समय भगवान में लगी रहे। और इसके लिए कंटिन्यूस हमें किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भागवतम को श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि हम अंत समय में भी अपनी मति को भगवान के अंदर केंद्रित कर सकें। और जब भगवान के अंदर मति दृढ़ हो जाती है, यहाँ पर प्रश्न उठता है ना कि जब मति कृष्ण के अंदर सती हो जाती है तो उसका पूर्ण परिणाम क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है? यहाँ पर उसके लाभ के विषय में बता रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। सूत गोस्वामी कहते हैं, आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राजे चाविकले नित्यम विरूढ़ ममता चहो। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राजे चाविकले नित्यम विरूढ़ ममता जहौ। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ ममता जहौ। यहाँ पर भगवान के अंदर यदि हमारा मन लग जाता है, हमारी मति यदि भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है, तो उसका परिणाम बताते हैं। वे कहते हैं आत्मा जाया, आत्मा कहते हैं शरीर को, हमारा ये शरीर, उससे हमारी प्रीति समाप्त हो जाती है। ये खाऊं, ये पहनूं, वो पहनूं, इसको प्राप्त करूं, उसको प्राप्त करूं, शरीर के प्रति जो आकर्षण है ना, वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और शरीर के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। शरीर के प्रति हो जाता है और उसके बाद कहते हैं जाया। जाया मतलब पत्नी, ना केवल अपनी परवाह नहीं रहती बल्कि पत्नी के प्रति भी जो हमारी प्रीति होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और आगे कहते हैं ना केवल पत्नी बल्कि सुता, सुत कहते हैं पुत्र को, पुत्र में भी जो प्रीति है वो भी समाप्त हो जाती है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, तो अपना ज्यादा उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, मैंने खाया नहीं खाया, मेरे पुत्र को अच्छा मिलना चाहिए, मेरे पुत्र को अन्न खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के, उनको कोई कष्ट नहीं। लेकिन भगवान, ये सब वास्तव में ये जो ममता है ना, वो ही हमारे बारंबार जन्म मरण का कारण बनती है। क्योंकि ये जो ममता आसक्ति किसी के अंदर भी रह जाती है तो वो सबसे बड़ा दोष है आत्मा का। तो लेकिन इन संबंधियों से ही केवल नहीं, सारी जिंदगी कमा कमा के हमने जो महल बनाया है, महल बनाया होता है, घर बना, आगार बोलते हैं उसको, इस महल के प्रति। और उसके बाद लिखा पशु, पशु का मतलब होता है हाथी, घोड़े। पहले जमाने में क्या होता था, हर कोई के घर में कुछ न कुछ ऐसा पशु होता था जिसपे वो चढ़ के, क्योंकि पहले गाड़ियां तो नहीं होती थी, तो जिसपे चढ़ के वो सफर करते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, उनके ऊपर चढ़कर वो एक जगह से। लेकिन आज उनकी जगह किसने ले ली है, बाइक ने, कार ने, और इस तरह के हमारे जो वाहन है जिनके पर चढ़कर हम लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इनके प्रति भी उसकी आकर्षण समाप्त हो जाता है। और द्रवीण, द्रवीण कहते हैं खजाना, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस जो हमने जमा करके रखा होता है उसके प्रति, और बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों के प्रति। ये सारे जो आकर्षण है, ये इनके प्रति जो हमारी ममता है ना, वो बहुत दुख देने वाली है। हम ये समझते हैं कि देखो इसने तो अपने सारे संबंधियों से, घर से, और है ना, धन दौलत से, पति पत्नी से, सबसे अपनी ममता समाप्त कर दी है, कैसे रहता है ना। लेकिन वास्तव में ये ममता जो है वो हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि इन सब के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जब मनुष्य संसार में आता है तो क्या वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना महल, अपना घर, अपने पशु या अपना खजाना लेकर आता है? नहीं ना, वो तो अकेले ही आता है ना। कोई भी व्यक्ति आज तक आपने देखा ऐसा जो अपने साथ कुछ और लेकर आया हो? कुछ भी नहीं, धन दौलत, पति पत्नी, माँ बाप, जो कुछ भी है वो इस संसार में हमें प्राप्त होता है, वो हमारा नहीं है। जो प्राप्त होता है वो एक दिन अवश्य हमसे छीन लिया जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है और कोई भी चीज सुख देने वाली नहीं है। सुख प्राप्त करना संभव नहीं है। हम इन सबको अपना समझते हैं और वास्तव में वही हमारे दुख का कारण बनती है। जो भी वस्तुएं हैं, भगवान ने कह दिया ये ही संस्पर्श जाबोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्धा। वास्तव में जो बुद्धिमान होते हैं वो इन सब वस्तुओं के अंदर बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते, नतेषु रमते बुद्धा। और ये कब होता है, जब मति भगवान के अंदर एकत्रित हो जाती है। तो इन सब राजी चाविकले नित्यम, चाविकले अविकल जो राज्य होता है, मतलब जिस जो बिल्कुल निष्कंटक राज होता है, जिसके ऊपर कोई खतरा शत्रु का नहीं होता है, ऐसे राज्य से विरूढ़ ममता जहो। विरूढ़ मतलब गहरी, जो बहुत ही गहरी ममता हर किसी की होती है, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन वो ममता जब भगवान के अंदर लग जाती है तो इन सब वस्तुओं से जहो, जहो का मतलब है वो त्याग, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वास्तव में एक बात समझने की है कि यदि ममता समाप्त हो जाएगी ना, ममता जो है वो ही हमारे दुख का कारण है, और ममता ऐसे ही समाप्त होने वाली नहीं है। आसक्ति कभी खत्म नहीं होती है, आसक्ति डाइवर्ट हो जाती है। जब हम किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो क्या होता है, यहाँ बताया कि उपधार्य मतिम कृष्णो औत्तरेय सतिम व्यधात, कि तब मति जो है वो भगवान के चरणों में सती हो जाती है। और जब मति भगवान में आसक्त हो जाती है, अर्थात जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका रिएक्शन क्या होगा, संसार से अनासक्ति हो जाएगी। कृष्ण से प्रेम कैसे होगा, यहाँ सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर बताते हैं कि श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो य भद्राणी विधुनोति सुहृत सता। जब हम भगवान की कथाओं को श्रवताम स्वकथा कृष्ण, जब कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं तो पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे पहले हृदयंतस्थो य भद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है ना, वास्तव में ये भौतिक वस्तुओं से प्रेम ही सबसे बड़ा अभद्र है, वो सब विधुनोति सूर्त सम साफ हो जाएगा। और जब हृदय के अंदर की ये भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, फिर भगवान श्री कृष्ण के अंदर भक्ति प्राप्त होगी। और उससे क्या होगा, जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम, वो फौरन से हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। पति पत्नी शरीर पशु खजाना संबंधी हर एक से वैराग्य, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा ना। ज्ञान क्या, ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के पुत्र हैं। जब भक्ति हृदय में आ जाती है, शुद्ध भक्तों के द्वारा जब हम कथा को श्रवण करते हैं और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो ज्ञान होने लगता है कि मेरा संबंध केवल कृष्ण के साथ है। और इस ज्ञान के द्वारा क्या होता है, वैराग्य। आपको ये पता लग जाए कि आपका संबंध केवल कृष्ण से है, उसके उपरांत भी यदि भौतिक आसक्ति बनी रही तो समझो आपने समझा नहीं अभी तक ज्ञान क्या है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो साक्षात सूर्य के समान है। श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। इनके अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अंधकार है, वो माया है। और आप खुद सोचिए कि जब जहाँ पर कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है, जहाँ पर सूर्य का प्राकट्य हो जाता है, वहाँ पर क्या अंधकार टिकेगा। याहार कृष्ण ताहार नहीं मायार अधिकार, सब कुछ माया है, चाहे वो हमारा संबंधी हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, सब माया है। और जब कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो इस माया का कोई अधिकार नहीं रह जाता। कुछ लोग की ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी करेंगे और साथ साथ में भौतिक वस्तुओं का जो आकर्षण है उसके साथ साथ उसको भी साथ साथ चलाते रहेंगे, ये असंभव है। प्रेम जो है वो इन दोनों से नहीं किया जा सकता, या तो कृष्ण से करेंगे या तो कृष्ण की माया से करेंगे। प्रेम गली अति साकड़ी या में दोई न समाए, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। आपको भौतिक आसक्ति को समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप जब कृष्ण के साथ प्रेम करोगे ना, तो कृष्ण जब हृदय में आ जाएंगे ना, तो ये माया का अंधकार, ये भौतिक वस्तुओं का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुवाद देखिए, भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्रता। जिस दिन आपको ये लग जाए ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध भगवान के साथ है, समझो उसी समय से आप मुक्त हो। मुक्त होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, मुक्त होने से के लिए इस शरीर के और शरीर के साथ लगी हुई वस्तु और व्यक्तियों के अटैचमेंट से मुक्त होना है, अपने आप को वास्तविक अपनी जो स्वरूप है उसको समझना है। तो मुक्त होने का क्या मतलब है? देहात्म बुद्धि से स्वतंत्रता। जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध, प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारे झंझटों के प्रति भ्रामिक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि फंसता कैसे जीव, सबसे पहले सोचता है मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मुझे आनंद आएगा, और उसका परिणाम क्या होता है? संतान का जन्म हो जाता है। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है। अब बच्चा है, घर है, घर भी चाहिए, है ना, पत्नी है तो फिर निवास स्थान की जरूरत होती है, और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं, और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना पड़ता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है ना, नौकरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि भाई आगे जाकर बच्चों का विवाह करना है, हायर स्टडी करने के लिए धन चाहिए, और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है कि कितना जमा हो गया है, मुझे कितना चाहिए होगा। और भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाने रखना होते हैं, और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है, अपना स्टेटस नहीं गिरना चाहिए। इस भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया। ये सब वस्तुएं जो है, जब तक इनके अंदर आसक्ति है ना, तब तक कभी कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति का क्या मतलब है? हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो तो उससे ये परिणाम निकलना चाहिए कि भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना सब कुछ है तो ओके, ये सब कुछ है, उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इनके प्रति हमारी कोई आकर्षण, हमारी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो विशुद्ध भक्त की ऐसी स्थिति होती है, भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से वे सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे, और उत्तरदायी राजा की भांति वे हमेशा सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं, पहले जब राजा परीक्षित को श्राप नहीं मिला था तब वो राज्य कर रहे थे और उस राज्य में अच्छे तरीके से सारी चीजें देखते थे कि कहीं मेरे राज्य में कलयुग का प्रभाव ना पड़े, हमारे राज्य की सारी प्रजा जो है वो अपराध ना करे। लेकिन किसी भी वस्तु में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे उनको श्राप मिला, उन्होंने सारा कुछ त्याग कर गंगा तट पे आकर बैठ गए और शुकदेव गोस्वामी से भगवान के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी भी वस्तु में आसक्ति रह जाती, घर में, पत्नी में, शरीर में, या फिर वस्तुओं में, धन में, खजाने में, तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए हाँ, यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए इन भौतिक वस्तुओं का त्याग करने के लिए। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत मुख्य बात बता रहे हैं कि घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता। किन्तु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है। हमें इन भौतिक वस्तुओं को भगवान की सेवा में कैसे यूज किया जाए वो केवल एक बुद्धिमान भक्त ही कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में यूज करते थे। तो हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका सही लाभ तभी उठा सकेंगे जब हम उसे भगवान की सेवा में यूज करेंगे। और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव हैं। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे गृहस्थ अपनी सारी तथा कथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा जो हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। अगर इतनी क्षमता नहीं है ना कि हम अपनी वस्तुओं को, घर में रहते हुए भी भौतिक वस्तुओं को, जो भी हमें भगवान ने दी हैं, उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन सब वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना है, तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। हरी बोल। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त के द्वारा भागवतम को श्रवण करने की महिमा के विषय में बता रहे कि यदि कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत से श्रवण करने का अवसर मिले, यदि श्री प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत से श्रवण करने का अवसर मिले ना, तो एक बार में यदि हम भगवत गीता को, भागवतम महापुराण के इन शब्दों को निष्ठापूर्वक श्रवण करेंगे ना, तो उसी समय भौतिक वस्तुओं की सारी आसक्ति, सारी ममता छूट जाएगी। लेकिन श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का 700 वर्षों तक भी यदि श्रवण करने में कोई लाभ नहीं होगा, सबसे पहले तो ये देखो कि आप सुन किसके द्वारा रहे हो। यदि कोई शुद्ध भक्त आपको श्रवण करा रहा है तो निश्चित रूप से भौतिक आसक्ति समाप्त होगी। आपको ऐसा लगेगा फिर तो हमें मेरे से नहीं सुनना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहूंगी, मैं तो संसार की सबसे निकृष्ट, सबसे नारकीय जीव हूँ, मेरे अंदर कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन आप सब देख रहे हो, आपके पास यदि शास्त्र नहीं है तो आप उस शास्त्र को किसी तरह से परचेज करो और इस शास्त्र के एक एक शब्द को देखो। हम केवल एज इट इज श्रवण कर रहे हैं, जो शब्द शास्त्र में लिखे हुए हैं, जो सुखदेव गोस्वामी ने उच्चारण किए हैं, जो सूत गोस्वामी के शब्द हैं, जो शिला प्रभुपाद जी के, उनको एज इट इज बता रही हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, जस्ट अ मैसेज। तो यदि इन सब शब्दों को हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एज इट इज श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से
यदि हम इसको निष्ठा के साथ श्रवण करेंगे तो हमारी जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, भौतिक वस्तुओं की ममता खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का 700 वर्षों तक यदि श्रवण करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों में सबसे बड़ा भोंडा नाम अपराध है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, भागवतम को सुनाकर बस वो चाहते हैं हमें बहुत ज्यादा धन एकत्रित करना है और उसके द्वारा वो अपने परिवार को चलाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ऐसे अभक्तों से श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आपको श्रवण करा के आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी प्रार्थना, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा करती हूँ। वो भी इसलिए कि मैं कंटिन्यूस इस सेवा को कर सकूं, मैं मेरी मति भगवान के अंदर लगे, मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूं, ताकि यदि मैं इस योग्य बन जाऊं कि मैं अच्छे तरीके से सुना सकूं, तो आपके अंदर भी वो सब गुण उत्पन्न हो कि आप भगवान के प्रति अपनी मति को सती कर सको। तो कृपया आप मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करना, क्योंकि जिससे हम श्रवण करते ना उसके प्रति हमारे हृदय में कुछ न कुछ भाव उसको समर्पित करना होता है। और यदि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो ही हमारा सुनना सफल होता है। तो लेकिन जो धन मांगते हैं कि भाई हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे उसके बदले में मुझे इतना धन मिले, तो ये बहुत ही बोंडा अपराध है। ऐसे लोगों से सुनकर हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि दूध पीने से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन यदि वही दूध में सांप ने एक थोड़ा सा एक जहर की बूंद गिरा दी हो तो क्या उस दूध पीने से कल्याण होगा? तो भले वही भागवत और भगवत गीता सुनाने वाला वो व्यक्ति यदि पवित्र नहीं है, उसके हृदय में यदि भौतिक आसक्ति है, वो यदि अपने धन की इच्छा को समाप्त नहीं कर पाया, तो भला आपके हृदय में ये भौतिक आसक्ति कैसे खत्म करेगा? और जब तक भौतिक आसक्ति हृदय में लगी रहेगी तो भगवत प्रेम भला कैसे उत्पन्न होगा? और क्योंकि वो खुद भी भगवान से प्रेम नहीं करता है, केवल धन कमाना, केवल बिजनेस धंधा चालू करने के लिए भागवत श्रवण करा रहा है, तो उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि आपके हृदय में वो भगवान की भक्ति को उत्पन्न कर सके। इसलिए सुनने से पहले अवश्य चेक कीजिए कि जिससे हम सुन रहे हैं क्या वो भगवान का शुद्ध भक्त है। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भगवान की शुद्ध भक्त बन सकूं, ताकि जिसको भी भागवतम श्रवण कराऊं उसका कल्याण हो सके। हरे कृष्ण।